नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए कड़ा कानून लागू किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपरिहार्य कारणों से इस वर्ष की संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आकाशवाणी समाचार भारत में सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
श्रीमती हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि श्रीमती शेख हसीना की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। उन्होंने दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने में उनके मार्गदर्शन की भी सराहना की। संजीव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नई सरकार के गठन के बाद ये जीएसटी परिषद की पहली बैठक है।
जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी। इस दौरान परिषद ने कई निर्णय लिए थे। जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीली न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता और आयु के संबंध में संशोधन की सिफारिश की थी। परिषद ने बाजरे के आटे से तैयार भोजन पर कर नहीं लगाने की सिफारिश की थी। परिषद ने गुड़ पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया था, जिससे गन्ना किसानों को बकाया राशि के तेजी से भुगतान के लिए राहत मिले और पशु चारा निर्माण की लागत में कमी आए। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी आम बजट से पहले कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श किया। उन्होंने आम बजट से पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। तेलंगाना सरकार राज्य के प्रत्येक किसान का 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हैदराबाद में कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए फसल ऋण माफ होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार जल्दी ही ऋण की माफी के लिए पात्रता मानदंड पर दिशा निर्देश जारी करेगी। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए कड़ा कानून लागू कर दिया है। इसमें दोषियों को अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। आधिकारिक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कानून के प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। इसमें धोखाधड़ी रोकने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान है। साथ ही धोखाधड़ी के साथ संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
इस वर्ष की संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच होनी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि इसके आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित किया जाएगा। एनटीए ने कहा कि किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी एनटीए हेल्प डेस्क को इन फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है 011-40-75-9-0-0-0 और 011-69-22-77-00। इसके अलावा एनटीए से csirnet@nta.ac.in पर मेल करके लिखित जानकारी भी ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची को अद्यतन करने का निर्देश दिया है। अगले महीने की पहली तारीख निर्धारण तिथि होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आयोग ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आकाशवाणी समाचार को भारत में सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड में से एक माना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण में देश के मीडिया जगत में आकाशवाणी समाचार की श्रेष्ठता की पुष्टि की गई है। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट वर्ष 2024 के हिस्से के रूप में जारी इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचार विश्वसनीयता के पैमाने पर देश के अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों की तुलना में काफी आगे है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर कहा कि ये सभी परिस्थितियों में सच्ची और प्रामाणिक खबरें प्रसारित करने की आकाशवाणी समाचार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
ऑल इंडिया रेडियो को वीडियो कैटेगरी में सबसे भरोसेमंद चैनल माना गया। ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती का मोटो है भरोसा सच का। हम सच के अलावा और कुछ नहीं दिखाते हैं, कुछ नहीं चलाते हैं। तो सारे दर्शकों को अभी मैं बधाई देना चाहूंगा जो हमारे इस रेडियो के साथ जुड़े रहे, ऑल इंडिया रेडियो के साथ, और कर्मचारियों को, अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई। ये जो भरोसा है देश का, दुनिया का ऑल इंडिया रेडियो के, इस भरोसे को हम लोग आगे भी कायम रखें।
मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रदेश में ड्रोन नीति बनाई जाएगी। उन्होंने विमानन, कृषि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोजगार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए अध्यापन की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में एक एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए चयनित महाविद्यालयों में अतिरिक्त पदों की स्वीकृति भी दे दी गई है। इन कॉलेजों को आवश्यक बजट भी उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि प्रत्येक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र भी खुलेगा। इसके लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में विद्या वन भी विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल रात संपन्न हो गया। महोत्सव के निदेशक प्रथुल कुमार ने बताया कि महोत्सव में 61 भाषाओं में 59 देशों की 314 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बार प्रतिनिधियों और फिल्म पंजीकरण की संख्या सबसे अधिक रही।
फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में निशिता जैन द्वारा निर्देशित भारतीय डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन थ्रेड ने प्रतिष्ठित सुवर्ण शंख पुरस्कार जीता। इंडिया इन अमृत काल की विशेष श्रेणी में निर्देशक एडमंड रैंसन को लाइफ इन लूम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। श्री मोहित सिंह को उनकी फिल्म एंड टूवर्ड्स हैप्पी एलिस के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में 6A आकाश गंगा ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए रजत शंख पुरस्कार जीता। बेस्ट शॉर्ट फिक्शन रजत शंख फिल्म सॉल्ट ने हासिल किया, जबकि NID अहमदाबाद की निर्जरा को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए रजत शंख से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में पोलैंड के जीमा ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए रजत शंख जीता और एस्टोनिया के सॉर मिल्क फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिक्शन के लिए रजत शंख जीता। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
असम की कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आज से शुरू हो गया है। इसका समापन इस महीने की 26 तारीख को होगा। इस मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। असम के पर्यटन मंत्री जयंत माला ने बताया कि कामरूप जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।
इस बार हम लोगों ने कामाख्या फूडिल से जो मेन रोड है वो रात 8 बजे से बंद कर देंगे। 8 बजे तक ही लोग नीचे से ऊपर आ सकेंगे। 8 बजे का बाद कोई लोग कामाख्या फूडिल का तरफ से नहीं आ सकेंगे और पांडू तरफ से जो रास्ता है, जो अल्टरनेटिव रास्ता है, उस रास्ते से 9 बजे तक आ सकेंगे। तीर्थयात्री के लिए हम लोगों ने दो कैंप बनाया है, एक कामाख्या स्टेशन में और एक पांडू पोर्ट में। ये कैंप में 20,000 से 25,000 लोगों का रहने का व्यवस्था है।
गजा के रफा में इजरायली सेना की गोलीबारी में कल 25 फलस्तीनी मारे गए और 50 अन्य घायल हो गए। इससे पहले इसराइल ने भूमध्य सागर तट पर मुवासी के आसपास बमबारी की। इस इलाके में पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में विस्थापित पहुंचे हैं। एंटीगा में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण शाम 7:30 बजे से FM रेनबो नेटवर्क और अन्य चैनलों पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
दिल में है बस जीत का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है।
पिछले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हराया था, जबकि बांग्लादेश को अपने अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया से 28 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच कल सुपर 8 के एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। सेंट लूसिया में जीत के लिए 164 रन के लक्ष्य के जवाब में मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन पर ही सिमट गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 163 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक ने 38 गेंद में 65 रन की शानदार पारी खेली। क्विंटन डिकॉक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक और गोवा में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी में गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद विमलेंदु जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश विदेश में अनेक कार्यक्रम अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला का शीर्षक है, दुनिया में उभर रही नई योग अर्थव्यवस्था, साधना की भूमि कश्मीर से दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग की ऊर्जा का संदेश। जनसत्ता लिखता है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदाता सूची पर भी कार्य आरंभ, मतदाता सूची को अद्यतन करने का निर्देश। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ी पर रोक का केंद्रीय कानून आज से लागू, कदाचार और अनियमितता पर अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रूपये जुर्माने का प्रावधान। दैनिक जागरण की खबर है, केंद्र ने तय की दाल की भंडारण सीमा, बढ़ती कीमतों को थामने और बढ़ती जमाखोरी पर उठाया कदम, अरहर चना और काबुली चना पर तय होगी भंडारण की सीमा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए कड़ा कानून लागू किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपरिहार्य कारणों से इस वर्ष की संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा स्थगित की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।